بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي زل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله، والذين معه أشد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنی پالنہار سے انگراہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چنھ ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے، کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج بدھوار ہے، اس فن کی 17، شابان کی 15 اور مارچ کی 8 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریہکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد راجنیتک چرچا، اس کے بعد ہم حضرت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے شبھ جنم دیوس پر ایک وشیش کاریہکرم آپ کو سنوائیں گے، اور انتم کاریہکرم ہوگا آج کل۔ اب آپ سید میسم سے وشو سماچار سنیے۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایرانی راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ دشمن ایرانی جنتا میں نراشا پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی ودیش منتری نے کھیتر میں اسرائیل کی اپستھتی کو گمبھیر خطرہ بتایا ہے۔ ایران اور عراق کو آپس میں لڑانے کی جرمنی کی کوشش کی تہران نے کڑی آلوچنا کی ہے۔ آسٹریلیائی پردھان منتری 4 دن کی بھارت یاترا پر احمد آباد پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ وستار سے وشو سماچار سنیے۔ ایرانی راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمن ایرانی جنتا میں نراشا پیدا کرنے کی اسفل کوشش کر رہا ہے۔ خفیہ منترالے کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں سے بات کرتے ہوئے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج دیش کی ساری ارجا اور سمپتی خطرے میں ہے۔ انہوں نے دشمن کے ہائبرڈ یدھ اور اشانتی پھیلانے کی کوششوں کا ذکر کیا اور کہا کہ دشمن جنتا کی سوچ اور چنتاؤں کو بدلنا چاہتا ہے۔ راشٹرپتی نان اور سٹیک دھارنا ساتھ ہی سنگیاتمک پربھتو اور خفیہ شریشتا دشمن کے موجودہ ہائبرڈ یدھ کا سامنا کرنے کے لیے آوشیک ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے دیش کے کچھ اسکولوں میں سواستھ سمسیاؤں کی اور اشارہ کرتے ہوئے تتھیوں تک پہنچ کے مہتو اور دشمن دوارا سمبھاوت حملوں کی بھوشیہ وانی کرنے اور روکنے کی آوشیکتا پر بل دیا۔ گیات رہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایران کے کچھ شہروں کے اسکولوں میں چھاتروں کے بیچ زہر خورانی کے معاملے سامنے آئے ہیں، اور سمبندھت سنستھان ان معاملوں کی جانچ کر تتھیوں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ کاکیشس کھیتر میں اسرائیل کی اپستھتی کھیتر کے لیے ایک چنوتی ہے۔ بدھوار کو انکارا میں اپنے ترک سمکش مولود چاوشوغلو کے ساتھ ایک سنیکت پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے امیر عبداللہیان نے کہا، ایران سبھی پکشوں کو چیتاونی دیتا ہے کہ وہ اسرائیل پر نظر رکھیں اور کاکیشس میں اسے پیر جمانے کا موقع نہیں دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتری عراق استھت آتنکوادی گٹ ایران اور ترکی دونوں دیشوں کے لیے سمان روپ سے خطرناک ہیں۔ ईरानी विदेश मंत्री का कहना था कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में सक्रिय आतंकवादी और इसी तरह से अफगानिस्तान से दाइश का खतरा हमारी संयुक्त चिंताओं में से है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि वो जिस रूप में भी हो खतरनाक है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए तुर्क विदेश मंत्री ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ईरान का आभार जताया और कहा कि तेहरान ने भूकंप पीड़ितों के लिए जमीनी और वायु दोनों मार्ग से सहायता सामग्री भेजी। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें दोनों देशों में मिलाकर 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ईरानी विदेश मंत्री भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने और तुर्क अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए अंकारा की यात्रा पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि तेहरान राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बातचीत को परिणामदायक बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायन ने तेहरान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ईरान कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर मजबूती से खड़ा है और बातचीत से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अमरीकियों और पश्चिमी देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि रेड लाइनों का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय हितों को पूरा करना और एक ऐसा समझौता प्राप्त करना जिसका सभी पक्ष पालन करते हैं ईरान के एजेंडे में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इराक की राजधानी बगदाद में जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बारबक के ईरान विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि जर्मन विदेश मंत्री ने यह बयान तेहरान और बगदाद के संबंधों को खराब करने के मकसद से दिया है। मंगलवार को बारबक ने बगदाद की अपनी यात्रा के दौरान ईरान से मांग की थी कि वो इराक में मिजाइल हमले करना बंद करें, क्योंकि इस तरह के हमलों से नागरिकों और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। बुधवार को कनानी ने जर्मन विदेश मंत्री के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि बारबक को पूर्व में जर्मन सरकार द्वारा इराक और ईरान के साथ किए गए शर्मनाक व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए और वो इस तरह के निराधार दावों से जर्मनी के अपराधों के इतिहास पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही हैं। ईरान इराक युद्ध के दौरान जर्मनी ने पूर्व तानाशाह सद्दाम का समर्थन किया था और सद्दाम शासन को रासायनिक हथियारों की आपूर्ति की थी, जिसे उन्होंने निहत्थे ईरानी और इराकी नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जर्मनी ने आज भी कई आतंकवादियों और अलगाववादियों को शरण दे रखी है, जिनके हाथ ईरानी और इराकी नागरिकों के खून से रंगीन हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने ट्वीट किया, भारत में शानदार स्वागत, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अल्बनीज की है। अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने ट्वीट किया, भारत में शानदार स्वागत। अहमदाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले मती आश्रम में पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 10 मार्च को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। गुरुवार को अल्बनीज और भारत के प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4th टेस्ट मैच भी देखेंगे। अल्बनीज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे और फिर हैदराबाद हाउस में उनकी मोदी से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वे भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों पर बैठक भी करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार की शाम अहमदाबाद स्थित राजभवन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने एक होली समारोह में भी शिरकत की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति के बारे में एक चिंताजनक विवरण सामने आया है। राज्य में युवा श्रम भागीदारी दर कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से लगातार गिर रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% है, जो पूरे भारत के औसत 7.1% से काफी कम है। श्रम बल भागीदारी दर कामकाजी उम्र की आबादी में उन लोगों की संख्या को मापती है जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। या काम की तलाश कर रहे हैं। घटती हुई श्रम बल भागीदारी दर बताती है कि लोग पूरी तरह से कार्यबल से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए रोजगार के कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान इलाके के पास मंगलवार को हुए एक विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह धमाका ढाका के नॉर्थ साउथ रोड के सिद्दीकी बाजार में शाम करीब 5 बजे हुआ, जब बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के बाद एक 7 मंजिला इमारत का मलबा आसपास के इलाके में बिखर गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सड़क से गुजर रही एक बस के तमाम शीशे टूटकर बिखर गए और उसमें सवार कई यात्री घायल हो गए। फायर सर्विसेज कंट्रोल रूम के अधिकारी राशिद बिन खालिद का कहना था कि विस्फोट की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची फायर सर्विसेज की टीम ने वहां से 4 शव बरामद किए और कई घायलों को बचाया। इस बीच ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद नजमुल हक ने बताया कि उन्होंने कम से कम 6 शव देखे हैं। अस्पताल में फिलहाल 100 लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई। बांग्लादेश में बीते एक महीने के दौरान ढाका समेत विभिन्न शहरों में कई विस्फोट हो चुके हैं, लेकिन ऐसे तमाम मामलों में जमी हुई गैस को ही विस्फोट की वजह बताया जा रहा है। इनमें से कुछ घटनाओं की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब तक जितनी जांच रिपोर्ट सामने आई है उनमें विस्फोट के लिए मूल रूप से इमारत या संस्थान के मालिकों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। फायर सर्विसेज का दावा है कि आम लोगों के सचेत नहीं रहने के कारण ही बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सीरिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ज़ायोनी शासन के युद्धक विमानों के हमले के कारण इस देश के भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचने में देरी हुई है। सीरिया के परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ज़ायोनी शासन के हालिया हवाई हमले के परिणाम स्वरूप अलेप्पो के हवाई अड्डा सेवा से बाहर हो गया और इस देश के भूकंप पीड़ितों के लिए विदेशी सहायता के आगमन में देरी हो रही है। रशिया टूडे समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के परिवहन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन कंपनी के बयान में कहा गया है कि भूकंप में मदद के लिए अलेप्पो से सहायता विमानों और अन्य अनुसूचित उड़ानों की लैंडिंग को दमिश्क और लताकिया एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया। बयान में सीरियाई यात्रियों से एयरलाइंस और उनके संबंधित कार्यालयों से यात्रा और उड़ान के नए कार्यक्रम हासिल करने की अपील की गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, देश की सत्ता पर कब्जा करने और अपनी योजनाओं को व्यावहारिक करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी नागरिकों का ध्यान समाज की समस्याओं से हटाने के लिए खेल और मनोरंजन कार्यक्रमों को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सऊदी लीग के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान ने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सऊदी अधिकारियों से कहा है कि खेल और मनोरंजन पर देश के संसाधनों को बड़ी मात्रा में खर्च करें ताकि सत्ता में उनकी स्थिति मजबूत हो। सऊदी सरकार पर अक्सर जनता का ध्यान मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे से हटाने के लिए खेल और मनोरंजन का उपयोग करने की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक प्रभाव व्यक्तिगत रचनात्मकता के अवसरों को रोकना है और निजी क्षेत्र और देश की विकास दर में ठहराव की ओर ले जाता है। कतर द्वारा 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश सऊदी अरब खेल आयोजनों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे संसार के अंतिम मुक्तिदाता के शुभ जन्म दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में हो रहे जश्न के बारे में।
आप पर दुरूद और सलाम।
और फिर बात करेंगे फ्रांस में आम हड़ताल से दिन प्रतिदिन خراب ہوتے حالات کے بارے میں۔ اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر میں 15 شعبان کے شبھ موقع پر جشن منایا جا رہا ہے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں 15 شعبان کے موقع پر پوتر نگر کربلا میں عمدے شردھالوؤں کے جن سیلاب اور سنسار کے انتم مکتیداتا کے جلد ظہور کے لیے ہو رہی دعاؤں کے بارے میں۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں پوتر نگر کربلا سے IRIB کے سمواددتا جلال خالدی، ہمارے ساتھی سید میسم کی آواز میں۔
آپ پر درود اور سلام۔
دنیا بھر میں سنسار کے انتم مکتی داتا حضرت امام مہدی کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر جشن کا ماحول ہے۔ ایران کے پوتر نگر مشہد اور قم سمیت سبھی بڑے چھوٹے شہروں، گاؤں اور علاقوں میں لوگ جشن منا رہے ہیں، ساتھ ہی سنسار کے انتم مکتی داتا کے جلد پرکٹ ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ وہیں عراق کے پوتر نگر کربلا کا نظارہ پوری طرح الگ ہے۔ عراق سمیت دنیا بھر کے لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو وقت کے امام اور سنسار کے انتم مکتی دادا کا شبھ جنم دیوس منانے کے لیے کربلا پہنچے ہیں۔ امام مہدی کے چاہنے والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کے پاس 1179 دیوں کو روشن کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا، ساتھ ہی سنسار کے انتم مکتی دادا کے ظہور کے لیے دعائیں کی۔
در شب عزیز
کربلا پہنچے ایک ایرانی شردھالو کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان، وشیش کر شیعہ مسلمان، جو سب سے زیادہ دعا کرتے ہیں وہ ہے امام مہدی کے جلد پرکٹ ہونے کی دعا۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور واسطوک اسلام کے پرچم کو دنیا بھر میں لہرائیں۔ عراق میں 15 شعبان کا جشن کیول شیعہ مسلمانوں سے وشیش نہیں ہے، دنیا بھر کے عام مسلمان 15 شعبان کی رات کو گناہوں سے توبہ کی رات، خوشیاں بانٹنے کی رات، دعا قبول ہونے کی رات، شفاعت کی رات اور نرک کی آگ سے بچنے کی رات کے روپ میں مناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھکانش عراقی جنتا ہر سال 15 شعبان کی رات کو نماز اور دعا میں بتاتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کربلا میں موجود عراقی شردھالوؤں کا کہنا ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن دنیا بھر کے سبھی مسلمانوں کے لیے ایک مہتوپورن سمے ہے، جب لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب نہ شیعہ اور نہ سنی، کوئی انتر نہیں ہوتا، سب بس اپنے پالنہار کے سامنے ایکجٹتا کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا وشواس ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ پوتر سے IRIB کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
اور اب چرچا کرتے ہیں فرانس میں مچے آہاکار کے بارے میں۔ मैक्रॉन सरकार द्वारा इस देश की पेंशन नीति में किए गए बदलाव के बाद से पूरे फ्रांस में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर ओर प्रदर्शन और हड़ताल का माहौल है। आम जीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पेरिस से IRIB के संवाददाता शहसवार हुसैनी, हमारे साथी अख्तर
अब्बास।
इन दिनों सभी फ्रांसीसी टीवी चैनलों, यहां तक कि गैर समाचार चैनल भी पेंशन में हुए बदलाव के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अजीब बात यह है कि 67% लोगों के विरोध के बावजूद फ्रांस सरकार अब भी अपने बिल पर अड़ी हुई है। यूनियनों द्वारा मंगलवार 7 मार्च से व्यापक और राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू होने की घोषणा के बावजूद विभिन्न विभाग के कर्मचारी एक दिन पहले ही सड़कों पर आ गए हैं।
Le gouvernement ne résout pas le problème de la dette. Or, on sait très bien que le départ, c'est ça.
प्रदर्शनकारी एक ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि सरकार अपने बजट घाटे की इस तरह भरपाई करना चाहती है। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार का तरीका गलत है। अगर सरकार को अपने घाटे की भरपाई करनी है तो अमीरों और उद्योगपतियों का टैक्स बढ़ाकर करे, न कि सेवानिवृत्तों पर दबाव बनाकर। इस बीच यूनियनों ने आर्थिक, शैक्षिक, परिवहन और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों से मंगलवार और आने वाले दिनों में काम बंद करने और मैक्रॉन सरकार पर पेंशन संबंधित नई नीति को वापस लेने के लिए दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम पूरी तरह काम ठप कर देंगे। वहीं जनता की राय को प्रभावित करने के उद्देश्य से फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ओलिवियर वेरान ने इन कर्मचारियों की हड़ताल को फ्रांस के सर्वनाश की संज्ञा दी है। इस हड़ताल और विरोध आंदोलनों में सड़क परिवहन नेटवर्क, वायु सेवा, बस परिवहन, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक सेवाओं और सुपर मार्केट से संबंधित लोग भाग ले रहे हैं।
Elle s'est fait sous la forme d'une augmentation d'une taxe.
एक रिटायर महिला कर्मचारी का कहना है कि सरकार पहले से ही सेवानिवृत्तों की पेंशन पर टैक्स का भार बढ़ा चुकी है और साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं में भी कटौती कर रही है। अब रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि करना चाहती है, जिसका सभी एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और गैसोलीन तथा डीजल रिफाइनरियों के साथ साथ रेल और मेट्रो परिवहन नेटवर्क के कर्मचारियों की अक्षय हड़ताल है, जो फ्रांसीसियों के लिए एक डरावना सपना बन गया है। मैक्रों की सरकार की नीतियों के विरोध में आज भी फ्रांस के 250 बड़े और छोटे शहरों में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं फ्रांस के मेट्रो स्टेशनों पर पड़े तालों और आम लोगों को यात्रा में हो रही समस्या ने इस देश की जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पेरिस से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट।
और भारत का भारत पर शासित कश्मीर में संसार के अंतिम मुक्तिदाता हजरत इमाम मेहंदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ के हर ओर जश्न का आयोजन हुआ और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर जो सबसे खास बात रही वो थी मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने की अपील। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित कश्मीर में आज इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजह शरीफ के जन्म दिवस के हवाले से बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सेंट्रल इस अवसर पर रैलियां निकाली गई, जिस संख्या के साथ साथ छोटे छोटे बालकों ने भी वो मदह खानी कर देखने के काबिल था। दार अल्लाह ताला फरज शरीफ की जिंदगी आली। इस अवसर पर धार्मिक नेताओं ने कहा,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
اس بیچ شب برات کے حوالے سے پوری گاٹھی اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئی۔ سری نگر کے سنوار میں ایک ایسی پرموکھ کے دھارمک نیتاؤں نے لوگوں پر ایکتا کے ساتھ آگے بڑھے۔ مولانا خزر وشو بھر میں مسلمانوں کی پستی کا جو سبب ہے نا اتفاقی ہے۔ انہوں نے لوگوں پر بل دیا کہ وہ ایک جٹ ہو جائیں۔ انہوں طاقتوں نے مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے نہیں دیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تقسیم در تقسیم ان کو کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلک کے نام پر ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوایا جا رہا ہے، پرنتو میری لوگوں سے یہ بنتی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ وشو میں اگر مسلمانوں کو اپنا لوہا منوانا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایکتا کے ساتھ آگے بڑھے۔ سبت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
شکریہ۔ یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں، ایک وشیش کاریکرم۔ دوستوں، کے بارہویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس پر ایک وشیش کاریکرم لے کر حاضر ہیں۔ سید میسم اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
ہر پتجڑ کے بعد بہار ہے۔ جس طرح سے بہار میں پرکرتی ہری بھری اور تازہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بہار موکش داتا کے پرکٹ ہونے کا کال ہے۔ نسندے حضرت امام مہدی کے پرکٹ ہونے کا سمے مانو اتہاس کا سب سے سورنم دور ہوگا۔ یہ ایسا زمانہ ہوگا جب ایشور دوارا کیا گیا وعدہ پورا ہوگا اور بھلے لوگ شاسن کریں گے۔ بھلے لوگوں کا شاسن ہوگا اور لوگ نیائے کے میٹھے سواد کا انوبھو کریں گے۔ اس کال میں وشو میں نیائے اور ایک آشیرواد کا بول بالا ہوگا۔ مانو بدھی پریپکو ہو جائے گی اور سداچار اپنے چرم پر پہنچ جائے گا۔
شیعہ مسلمانوں کے بارہویں اور اس دھرتی پر انتیم امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام کا جنم 15 شعبان 255 ہجری کو سامرہ شہر میں ہوا تھا۔ ان کے شبھ جنم سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم اماموں کی وہ بھوشیہ واڑی درست ثابت ہوئی جو انہوں نے 2 شتابدیوں پہلے کی تھی۔ بارہویں امام کا نام اور اپنام پیغمبر اسلام کے نام محمد اور اپنام ابو القاسم پر، ان کی غیبت یا نظروں سے اوجھل رہنے کے دور میں انہیں وبھن اپناموں جیسے امام زمانہ، بقیت اللہ، خلف صالح اتیاد بارش کی گئی ہے۔ ان کے پتا علیہ السلام اور ماں کا نام، ان کی ماں روم کے سمراٹ کی بیٹی تھی۔
نرجس خاتون ایک شاہی پریوار میں بھی، اس کے باوجود بچپن سے ہی تھی۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو ان کے دادا نے اپنے بھتیجے سے ان کی شادی کرانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور بھویہ سماروہ کا آیوجن کیا، لیکن ایک آشچرجنک گھٹنا کے کارن محل ہل گیا، زمین پر گر پڑے۔ سوئم سمراٹ اور اس کا بھتیجا پر گر گئے۔ ورشٹھ جوتشیوں میں سے ایک نے سمراٹ سے کہا، بھگوان کے کرودھ اور سماروہ کے انت کا سنکیت ہے۔ سیزر کے دوسرے بھتیجے سے شادی کے لیے ایک ایسے ہی سماروہ کا آیوجن کیا گیا، لیکن اس بار بھی ویسے ہی گھٹنا ہو کر محل سے باہر نکل گئے۔ سمراٹ بہت وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کی پوتی اس گھٹنا سے خوش تھی۔
اس رات کو ملکہ نے ایک سپنا دیکھا کہ پیغمبر اسلام، ان کا نگاہ شیعہ مسلمانوں کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کے دل میں امام حسن عسکری کے پرتی شردھا اور پریم جاگ اٹھا۔ وہ ان کی محبت میں اتنا ڈوب گئیں کہ کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ دن بہ دن ان کی حالت خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ ویدوں نے ان کے سواستھے کو لے کر نراشا جتا دی۔ آخرکار روم کے وہ بندی جو مسلمانوں کے ہاتھوں بندک بنائے گئے تھے کا بھی شامل تھیں۔ امام حسن عسکری کے آدیش انوسار بشر بن سلیمان نامک شخص نے انہیں خرید لیا اور سمرہ روانہ کر دیا۔ سمرہ میں جیسے ہی ان کی نظر امام حسن عسکری کے چہرے پر پڑی، وہ لگا جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا۔
وشرت امام مہدی پر وشواس صرف شیعہ مسلمانوں سے وشیش نہیں ہے، سبھی مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی اس پر سہمت ہیں کہ انتم دور میں پیغمبر اسلام کا انتم وارث اور اترادھیکاری پوری دنیا پر شاسن کرے گا اور دنیا کو پورن روپ سے اتیاچار اور اپرادھ مکت کر دے گا۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسرے دھرموں کے ماننے والے انتم مکتی داتا پر وشواس رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وشیشتا یہ ہے کہ وہ اس مکتی داتا کو اس کے نام اور گنوں سے پہچان۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کا ونشج ہے اور ایشوری آدیشانوسار ایک دن ضرور پرکٹ ہوگا۔
ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دھرم موکش داتا کے پرکٹ ہونے پر بل دیتے ہیں، لیکن اسلام دھرم نے موکش داتا کے جنم کی تیتھی اور اس کے نام کو نردھارت ایوم اسپشٹ کر دیا ہے۔ ان کا نام مہدی ہے، وہ پیغمبر اسلام کے پریوار سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ورشٹھ نیتا کا کہنا ہے کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ پوتر وجود ایشور کے وعدے کو ساکار کرتا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ شج دھرتی پر ایشور کا پرتندھی لوگوں کے بیچ جیوت ہے، موجود ہے، لوگوں کے بیچ ہی جیوت کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ہوتا ہے۔ جو لوگ بھاگیہ شالی ہیں وہ کچھ ہیں لیکن اسے پہچان نہیں پاتے، وہ موجود ہے، ایک واستوک انسان ہے جس کے نام اور ماں باپ کی پہچان اسپشٹ ہے اور لوگوں کے بیچ رہتا ہے، یہ ہم شیعوں کے وشواس کی وشیشتا ہے۔
کچھ لوگ امام کے پرکٹ نہیں ہونے کو ان کا اپستھت نہیں ہونا مانتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت علی اس سندر میں فرماتے ہیں، جب میرے ونش سے ادرش امام نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو لوگوں کا ایک سموہ سوچے گا کہ ایشوریہ مارگ درشک اب نہیں ہیں اور امامت سماپت ہو گئی ہے۔ علی کے ایشور کی سوگند، اس سمے ایشوریہ مارگ درشک ان کے بیچ ہوگا، ان کی گلیوں اور بازاروں میں چلے گا، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن لوگ نردھارت سمے اور دن تک اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔ واستوکتا یہی ہے کہ امام اپستھت ہیں لیکن لوگ اپنے پاپوں ایوم اپیکشا کے کارن امام کی اپستھتی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔
پرشن یہ اٹھتا ہے کہ ایسے امام کے استتو یا اپستھتی کا کیا لابھ کہ جو لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہو اور لوگ اس کی اپستھتی سے لابھ نہیں اٹھا سکیں۔ یدپی یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی اٹھتا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا، ادرش کال میں امام مہدی کے استتو کا کیا لابھ ہے؟ حضرت نے فرمایا، لوگ اس ادرش امام کے استتو سے لابھانوت ہوں گے، جیسے کہ بادلوں کے پیچھے چھپے سورے سے لابھانوت ہوتے ہیں۔ اس پوتر کتھن کا سرل مطلب یہ ہے کہ جس پرکار بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سوریہ سمست پراڑیوں کو جیون پردان کرتا ہے اور اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ نشٹ ہو جائیں گے، اسی طرح امام یدپی پردے کے پیچھے ہیں اور ادرشیہ ہیں لیکن ان کا استتو سمست جیو جنتوؤں ایوم پراڑیوں کے موکش کا کارن ہے۔
حضرت مہدی بادلوں کے پیچھے، ان کے استتو کی آدھیاتمک کرنیں سبھی کو ارجا پردان کرتی ہے، وبھن پرکار کے لابھ ہیں جیسے کہ وشو استر پر اسلام کی پربھاوی اور سکری اپستھتی۔ فرانسیسی اسلام وید ہنری کاروین کہتے ہیں، میرا ماننا ہے جس نے ایشور اور لوگوں کے بیچ ایشوریہ مارگ درشن کے سمبندھ کو ہمیشہ جیوت رکھا ہے اور نیتتو کے وشے کو لگاتار استھاپت کیے رکھا ہے۔ یہودی دھرم نے ایشور اور لوگوں کے بیچ ایک واستوک سمبندھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت پیغمبر محمد پر وشواس نہیں کیا، پرینام سوروپ ایشور اور سرشٹی کے بیچ کا سمبندھ ٹوٹ گیا۔ عیسائی دھرم بھی حضرت عیسیٰ تک آ کر رک گیا۔ اسلام میں اور وشیش روپ سے شیعہ مت میں ہر اسلام کی نبوت کے ساتھ ایشور اور انسانوں کے بیچ وحی یا آکاشوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن ولایت یا انتم ایشوریہ دوت کے اتراधिकारی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہ مارگدرشن کی نرنترتا ہے جو ایشوریہ دوت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی۔
اسلامی گرنتھوں میں الیکھ ہے کہ اگر امام کا استتو نہیں ہوگا تو دھرتی اپنے واسیوں کو ان کے ادھک پاپوں کے کارن نگل لے گی اور جیون کا سلسلہ سماپت ہو جائے گا۔ ایشور اپنے دوتوں ایوم اماموں کے کارن دھرتی سے اس پرکوپ کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کے بندوں کو مکتی پانے ایوم اتکرشتا تک پہنچنے کا اوسر پراپت ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو چیز میری امت ارتھات انویائیوں کی سرکشا کا کارن ہے وہ میرے پریجن ہیں، اگر میرے پریجن لوگوں کے بیچ نہ رہیں تو ایشوریہ پرکوپ لوگوں کو نشٹ کر دے گا۔
ہاں، امام مہدی کا انتظار اس شکتیشالی ایشوریہ پرتنیدھی کا انتظار ہے جو آئے گا اور پیڑت اور اتیاچار گرست لوگوں کی سہایتا سے اتیاچار اور ظلم کو مٹا دے گا۔ اس کے آنے کے بعد ستیہ کی جیت ہوگی اور نیائے کی استھاپنا ہوگی۔ ورش نیتا اس بندو پر بل دیتے ہیں کہ انتظار کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا نہیں ہے کہ سب کام خود ہی ہو جائیں گے۔ انتظار کا مطلب ہے سکریتا اور تیار رہنا۔ مانوتا کے مکتیداتا کے پرکٹ ہونے کی پرتیکشا کرنے والے سمست لوگوں، وشیش کر سبھی شروتاؤں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس پر ہاردک بدھائی پیش کرتے ہیں۔
श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आज कल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम दुनिया के सबसे खतरनाक काम पत्रकारिता के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
पत्रकारिता दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों और सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है। निश्चित रूप से घातक काम है। आंकड़ों और समाचारों पर नजर डालने से पता चलता है कि दुनिया के कई पत्रकार जीवन सुरक्षा का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं और पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम में हम 2022 के आंकड़ों की समीक्षा करते हैं, जिसमें पत्रकारों की जान को होने वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI ने एक बयान जारी कर घोषणा की कि पिछले साल ड्यूटी के दौरान 65 पत्रकारों और प्रेस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस संस्था ने पिछले साल मारे गए पत्रकारों की संख्या 45 घोषित की थी और पत्रकारों की मौत की संख्या में वृद्धि के लिए मैक्सिको और यूक्रेन में दर्ज मामलों की ओर इशारा किया गया है। इस बयान के मुताबिक 2022 में मेक्सिको में 14 और यूक्रेन में 9 पत्रकार मारे गए।
यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2022 में पत्रकारों और मीडिया स्टाफ की हत्या के अपराध में तकरीबन 50% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर देखा जाए तो हर चौथे दिन एक पत्रकार की हत्या हुई है। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले ने कहा है, मारे गए पत्रकारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि खतरनाक है और अधिकारियों को इन अपराधों की सीमा निर्धारित करने और अपराधियों को दोषी ठहराने के अपने प्रयासों को दुगना कर देना चाहिए।
रिपोर्टों के अनुसार इनमें से आधे पत्रकारों को तब निशाना बनाया गया जब वे ड्यूटी पर नहीं थे। ये विषय इस तथ्य को दर्शाता है कि संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं और पत्रकारों के लिए खाली समय में भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। 2003 से 2022 के बीच दुनिया में 1668 पत्रकार या प्रतिवर्ष औसतन 80 पत्रकार मारे गए हैं और इराक और सीरिया इस पेशे के लिए सबसे खतरनाक देशों में पहले नंबर पर हैं।
गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने घोषणा की है कि सीरिया और इराक में पिछले 20 वर्षों के दौरान जहां जंग हो रही है 578 पत्रकार मारे गए, जो मारे गए कुछ पत्रकारों की संख्या का एक तिहाई से अधिक है। इन दोनों देशों के बाद 125 पत्रकारों के साथ मेक्सिको, 107 के साथ फिलीपींस, 93 के साथ पाकिस्तान, 81 के साथ अफगानिस्तान और 78 पत्रकारों के साथ सोमालिया का क्रमशः नंबर आता है। मारे गए पत्रकारों में 95% से अधिक पुरुष हैं।
पिछले दो दशकों के दौरान अंधकारमयी साल 2012 और 2013 की ओर लौटते जाते हैं और जब सीरिया में संघर्ष के कारण क्रमशः 144 और 142 पत्रकार मारे गए थे, इन दो वर्षों के बाद धीरे धीरे शांति बनी रही और 2019 के बाद से हमने मौतों की संख्या कम देखी है। हालांकि यूक्रेन में युद्ध के प्रकोप के साथ मरने वालों की संख्या 2022 में फिर से बढ़ने लगी और 58 पत्रकार ड्यूटी के दौरान मारे गए।
विश्व स्तर पर युद्ध क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्षों को कवर करने वाले पत्रकार मारे गए हैं, लेकिन गैर युद्धक क्षेत्रों में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के कारण भी पत्रकारों की संख्या अधिक मारी गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने घोषणा की है कि 2022 में मारे गए पत्रकारों में से आधे अमरीका यानी मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, होंडुरस के हैं, जबकि ये साबित करता है कि आज ये देश मीडिया के लिए सबसे खतरनाक देश बन गए हैं।
पिछले साल एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पत्रकारों की 16 हत्याएं और पूर्वी यूरोप में 11 हत्याएं दर्ज की गई। पिछले साल पत्रकारों के लिए सबसे घातक देश मैक्सिको जहां 19 हत्याएं, यूक्रेन जहां 10 हत्याएं और हैती में 9 हत्याएं दर्ज की गई थी।
बहरेन प्रेस एसोसिएशन ने 2022 के दौरान बहरेन में पत्रकारों, मीडियाकर्मियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं। एसोसिएशन ने एक बयान में घोषणा की है कि फरवरी 2011 के मध्य से दिसंबर 2022 तक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से दर्ज मीडिया सदस्यों के अधिकारों के उल्लंघन की कुल संख्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले लगभग 1811 तक बढ़ गए।
इस बयान में ये कहा गया है कि इस समय पूछताछ और गिरफ्तारी के 17 मामले, न्यायिक कार्रवाई के 9 मामले, विभिन्न तरीकों से उल्लंघन के 15 मामले और बार बार आरोप लगाने के 4 मामले, जिनमें कानूनी संस्था का अपमान करना, झूठी खबरें फैलाना, धार्मिक गतिविधियों का अपमान करना और अपमान और बदनामी दर्ज की गई है।
बहरेन प्रेस एसोसिएशन ने आले खलीफा शासन से उन सभी फोटोग्राफरों, मीडिया कर्मियों और कार्यकर्ताओं को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने का आह्वान किया है, जिन्हें उनकी पेशेवर गतिविधियों या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। बहरेन प्रेस एसोसिएशन ने मीडिया और प्रेस कर्मियों की मनमानी गिरफ्तारियों और उनके न्यायिक ट्रायल को भी बंद करने की मांग की है।
जी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने घोषणा की है कि बहरीन के अधिकारी पत्रकारों की जासूसी कर रहे हैं और उनके काम पर कई प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हें जानकारी सेंसर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस संगठन ने आगे कहा है कि 2022 में बहरीन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 में से 167 स्थान पर है और बहरीन के अधिकारी कई मुद्दों पर पत्रकारों और मीडिया के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाते हैं।
बहरीन में कई पत्रकारों को बहरीन में वर्तमान हालात और प्रदर्शनों, क्रूर गिरफ्तारियों और इस देश के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के उल्लंघन को कवरेज करने के अपने पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शासकों द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है। बहरीन में 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से हजारों प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कुछ लोगों को सामूहिक परीक्षणों के लिए लंबी जेलों की सजा भी सुनाई गई है।
हाल ही में फिलिस्तीनी पत्रकारों का समर्थन करने वाली समिति ने बताया कि ज़ायोनी शासन ने 2022 में फिलिस्तीन में प्रेस के खिलाफ 1300 उल्लंघन किए हैं, जिसमें अल जजीरा की पत्रकार शीरिन अबू आकेला की शहादत भी शामिल है। इन परिणामों से पता चलता है कि फिलिस्तीनी पत्रकारों की रक्षा की समिति ने, जिसे अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मीडिया की स्वतंत्रता पर ज़ायोनी शासन द्वारा जानबूझकर किए गए हमलों को एक खतरनाक वृद्धि के रूप में वर्णित किया गया है।
इन उल्लंघनों में हत्याएं, 85 गिरफ्तारियां, 4 निर्वासन, साथ ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के चल रहे अपराधों को कवर करने वाले प्रेस के सदस्यों को निशाना बनाना और उन्हें अपमानित करना भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ायोनी सेना ने पत्रकारों को मानव ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया है।
पिछले साल प्रेस के खिलाफ ज़ायोनी शासन के हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मीडिया संस्थान और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंधों का उल्लेख कर सकते हैं। साथ ही पत्रकारों को काम करने से रोकने और उनके उपकरण जब्त करने के 242 मामले सामने आए हैं।
इस रिपोर्ट में युद्ध की गोलियों और शारीरिक हमलों के साथ पत्रकारों को सीधे निशाना बनाने के 215 मामले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ज़ायोनी कब्जे वाली ताकतों द्वारा फेंकी गई जहरीली गैस के कारण दम घुटने के अलावा गंभीर चोटें आईं। 2022 में पत्रकारों के खिलाफ ज़ायोनी शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शीरिन अबू आकेला की शहादत है, जिन्हें 11 मई को जेनिन में ज़ायोनी सैनिकों द्वारा हमले की खबर कवर करने के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। इस फिलिस्तीनी पत्रकार की शहादत के दृश्य के प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की है कि उन्हें जानबूझकर ज़ायोनी सैनिकों ने गोली का निशाना बनाया।
अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर AFJC की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 2022 में मीडिया और पत्रकारों की स्वतंत्रता बुरी तरह से बिगड़ी है। पत्रकारों के लिए हिंसा और खतरों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ मीडिया के लिए काम करने की जगह भी कम हो गई है। इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि अफगानिस्तान में मीडिया समुदाय की स्वतंत्रता, जो अगस्त 2021 में तालिबान शासन की बहाली से पहले आंशिक रूप से हासिल की गई थी, तेजी से गायब हो रही है।
पिछले साल अफगान जर्नलिस्ट सेंटर ने मीडिया और पत्रकारों की स्वतंत्रता के उल्लंघन की कम से कम 260 घटनाएं दर्ज की, जिनमें धमकियां, गिरफ्तारियां और हिंसक व्यवहार शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 138% बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट के नतीजों से पता चलता है कि कुछ मामलों को छोड़कर इन घटनाओं को प्रशासन या तालिबान से जुड़े व्यक्तियों, विशेष रूप से सुरक्षा और खुफिया कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया था।
अफगान जर्नलिस्ट सेंटर में दर्ज घटनाओं की कुल संख्या में से 119 घटनाओं में पत्रकारों को एक से कई घंटे तक, दिन और कई महीनों तक अस्थायी रूप से हिरासत में रखा गया था, जिनमें से अधिकांश शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा, बंदी और अपमान का शिकार रहे हैं, जबकि काबुल में लगभग आधे पत्रकारों यानी 58 मामले गिरफ्तारियों के दर्ज किए गए हैं। तो इसी के साथ आशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।